एक अजीब इत्तेफाक ठीक उस वक्त हमारे साथ हुआ जब UF4 तौलीद के मरहले में था, यानी जब हम पहली बार UF4 पैदा कर रहे थे और सब लोग भी बहुत खुश थे। आप तसव्वुर करें कि पहली बार था कि जब हम UF4 को तौलीद करें, सब लोग खुश थे और सब फैक्ट्री से बाहर आ गए थे। तकरीबन उसी वक्त उसी मिनट एक प्लांट तबाह हो गया, एक हिस्से को कंट्रोल कर लिया। लोगों में से एक दो ने मुझे याद है कि बर्फ़ की सिल्लियाँ इधर से उधर ले जा रहे थे, शायद प्लांट को ठंडा करने से कुछ फ़र्क पड़े। एक शख्स उनमें से बाल्टी लेकर प्लांट के अंदर चला गया ताकि वो जगह जो तबाह हुई है बाल्टी से पानी डालकर उसको कंट्रोल करे। एक टीम और तश्कील दे दी थी जो मवाद निकल रहा था उसको कंट्रोल करे। और हाँ, उसी वक्त ड्यूटी पर कुछ पेचीदगियाँ।
इस बिना पर यूरेनियम के लिए एक संगीन प्लांट करना होगा, मसलन स्टील, शीशा या फिर कुछ और। इस बारे में हम तमाम हवालों से कोई भी खतरनाक तरीन मवाद मादे को सिफ्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते और खुद हमारे मुल्क के इदारे और वहाँ के हिफाजत के मराकज चाहे तो इन खतरों से अपने मुल्क को बचा सकते हैं।
सीमी साहिबा, हम सब सारा की शादी में जा रहे हैं। अम्मी कह रही थी कि तुम्हारे लिए खाना लेते आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जुम्मे की सुबह 9:30 पर तुम्हारे लिए टाइम दिया है बिलवार फरहिंग ब्यूटी पार्लर शहरजाद। शुक्रिया ताइब। फिर पर्सनल, फिर तेहरान से तुम्हारा भाई अशकान। फजूल बच्चा, मेरे हाथ से मारा जाएगा किसी दिन।
जी अंदर आ जाए।
अस्सलाम वालेकुम।
सलाम
ताहिब साहिबा से मिलना
था। आप अंदर आ जाए, तशरीफ रखें।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
कैसी हो?
ठीक हूँ।
तकलीफ तो नहीं हुई?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
बैठो। अच्छा, तो काम किया तुमने?
हाँ, एक बहुत ही खुफिया इंटरव्यू मैंने अपने पास रख लिया है बगैर उनको इत्तला दिए हुए।
बहुत अच्छे। अब अगला कदम उठाने की बारी है, और मुश्किल काम भी नहीं।
मुश्किल की अब कोई बात ही नहीं है। सच में मैंने तुम्हारी बातों पर गौर किया है, देखा कि तुम सच ही कह रही हो। मेरे लिए जरूरी है कि अपने पास संभाल के रखूं, वरना कोई दलील ही नहीं रहेगी कि वो अफशीन पर रहम करे।
तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हबीबी और मुहीब के खिलाफ सबूत जमा हो सके। उस वक्त तुम ये साबित करोगी, अगर उन्होंने तुम्हारी बात पर अमल नहीं किया तो तुम उन्हें रुसवा कर सकती हो। वो जानते हैं कि अगर हुकूमत ईरान को मालूम हो गया तो वो अपने इदारे की नजरों में गिर जाएंगे। अगर यहाँ से निकल के हमारी फोर्सेस से भाग जाएंगे तो उन्हें उनका इदारा ही नहीं छोड़ेगा। अगर तुम मुहीब और हबीबी के खिलाफ सबूत जमा कर सको तो तुम उन्हें अपने पूरे इख्तियार में ले सकती हो।
बिल्कुल, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन मैं किस तरह सबूत जमा करूँ बताओ?
क्या तुम जानती हो जो कैमरा तुम्हारे पास है उसका मियार क्या है?
हाँ।
तो फिर ये भी जानती होगी कि उस कैमरे से हर तरह और हर तरीके से रिकॉर्डिंग हो सकती है।
बिल्कुल, ये तो बिल्कुल मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा था।
मगर जिस चीज में मैं ट्रेनिंग देना चाहती हूँ वो ये है, जितनी मुलाकातें मुहीब और हबीबी से हों उन्हें रिकॉर्ड करो। कोशिश करो कि मुलाकातों में सब बताएं। देखना तुम, बाद में यही बातें सबूत बन जाएंगी।
बिल्कुल ठीक, अगर वो लोग समझ गए तो।
एक मुलाकात को रिकॉर्ड कर लो, बस यही काफी होगा। बाद में कह सकती हो कि सारी मुलाकातें रिकॉर्ड की हुई हैं मैंने, और अपनी बात साबित करने के लिए एक मुलाकात की रिकॉर्डिंग दिखा दो। इस तरह ये खेल तुम्हारे हाथ में आ जाएगा।
बिल्कुल ठीक।
उम्मीद करती हूँ कि ये काम तुम अगली मुलाकात तक कर लोगी।
मैं ऐसा ही कुछ सोच रही थी।
10 मिनट बाद निकलना, अभी मैं जा रही हूँ।
ठीक है।
अपना बहुत ख्याल रखना।
अभी 1 घंटे पहले इत्तला दी है, प्रोग्राम 1 महीने आगे चला गया है। एक टीम एंटी एटॉमिक ऑर्डिनेंस जो हमारी तंसीबात देखने ईरान आ रही है, हमारी साइट भी उसका हिस्सा है। हमें चाहिए कि हम तैयार रहें।
ज़ाहिरन उनका इरादा है कि सलामती काउंसिल में ईरान के ऊपर कीचड़ उछालें। आ रहे हैं कि किसी भी तरह कोई बात बना सकें, और कुछ नहीं।
अभी सब कुछ ठीक है और अपनी जगहों पर है।
बहमीनी ठीक कह रहा है, यही काफी है कि इस भागदौड़ में उनको छोटा सा बहाना दे दें, फिर उसके बाद खुदा ही जानता है कि क्या होगा। ऊपर से सख्ती से ऑर्डर्स आए हैं कि हम कोशिश करते रहें और उन्हें कोई बहाना ना दें।
इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है?
प्रोजेक्ट नारंगी जारी रखा जाए, बस ये काफी है कि फिल्म बंदी के मरहले को 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दें। कोई परेशानी तो नहीं?
नहीं, कोई परेशानी नहीं। सिर्फ ये नहीं जानता कि हम शहरी जनाब गाय की तरह हंसने वालों के साथ क्या करेंगे।
अभी कुछ भी नहीं, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। जब तक वो टीम नहीं चली जाती कुछ भी नहीं करोगे। उनके तरीकों को देख लो, खुद उनको भी, उनके ताल्लुकात को भी, और उनकी इत्तलात को भी चला देंगे।
एक बार बता दें, हम लोग गरीब हैं, इतना लंबा रास्ता नहीं अपनाएंगे, और इस तरह आप भी मजबूर नहीं होंगे जिस तरह आप लोग रास की बातें कर रहे हैं।
वाह, मेरे दिल की बात कह दी है, माशाल्लाह क़बादी। अच्छा, तुम्हारे इस प्रोजेक्ट नारंगी की वजह से सबको काम पे लगा दिया है डॉक्टर?
आप ठीक कह रहे हैं, प्रोजेक्ट नारंगी एक ऐसी चीज है, इसमें आप दोनों बुजुर्गों की कोई जरूरत नहीं है। बस अब आप खड़े हो जाइए और अपनी जिंदगी का मजा लीजिए, हमें छोड़ दीजिए ताकि हम अपना काम कर सकें।
खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा, सलाम।
शुक्रिया आपके आने का।
यह खेल खतरे की तरफ चला गया है, जारी नहीं रखना चाहिए। हमारे लोगों की जान खतरे में है, अब तो तबाही के लिए सिर्फ क्लिक करना पड़ता है।
किसको क्लिक करें महमूद? जो असली शख्स है अभी भी समंदर के उस पार है, हम उसे ढूंढ नहीं सके हैं। अभी तुम्हारी बातों में उलझा हुआ हूँ और 4 जासूसों के साथ लड़ भी रहा हूँ। वो जगह बना रहे हैं, अभी कुछ नहीं करना है, बस उस वक्त हाथ डालना है जब वो अपने ठिकानों पर बैठे होंगे। तुम बस उन लोगों से निमटने के लिए तैयारी करो, अगर एहतियात से काम लेंगे तो हर चीज हमारे हाथ में होगी। हाँ, और उन लोगों से कह दो कि तीसरा मरहला कुछ अरसे के लिए आगे कर दिया है, अभी गिरफ्तारियां करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा।
किसकी पकड़ जकड़ की बात कर रहे हैं? क्या वो इंतजार नहीं कर सकते कि एक मर्तबा इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो जाए?
तुम इंटरव्यू के लिए परेशान ना हो, फिलहाल मसूद रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अहम है, जिसके लिए 8 दिन कम नहीं है।
क्या अभी वाकई इस टीम का यहाँ पर आना बहुत ज्यादा अहम है?
जब सलामती काउंसिल की इजाजत हो तो हाँ, अलबत्ता हर वक्त इम्कान है कि कोई चीज ऐसी हो जिससे कुछ और हो जाए, इसलिए हमें खुद को कंट्रोल करना होगा।
आखिर सलामती काउंसिल को हमारे काम से क्या लेना देना है कि हम कंट्रोल में रहें या ना रहें?
कोई मसला है कि अगर हम कंट्रोल में रहें तो?
हाँ, कोई मसला नहीं है।
मगर हम आखिर कर भी क्या सकते हैं? अगर टीम समझ जाए, मुमकिन है कि अमेरिका हमला कर दे।
देखो सीमी, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं कि टीम समझे या नहीं समझे, मगर वो हैं जो बहाने ढूंढ रहे हैं।
माफी चाहती हूँ महमूद साहब, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, मगर इस वक्त जब हर जगह अफरा तफरी है, फिर क्यों सब कुछ उन्हीं का है?
बहुत अच्छा लड़की।
सीमी साहिबा, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रही हैं, मगर आपकी सोच गलत है।
आखिर ऐसी भी क्या वजह है कि अभी तक ऐसा नहीं हो सका कि खुद को दुनिया के एक एटमी मुल्क में तब्दील कर सकें?
अगर एटमी सलाहियत हासिल करना इतना आसान हो तो आधी दुनिया के मुल्क एटमी ताकत के मालिक हो चुके होते। नहीं, ये वो बातें करते हैं जो अमेरिका और इसराइल को बहाने देते हैं कि उनका जो दिल चाहे वो आराम से कर सकते।
तो जज्बाती हो गए मेरे भाई, खुद पे काबू करें। मेरी बीवी कितनी बार ये बात पूछ चुकी है आपसे, कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी चाहती है, अब बस भी करें ताकि हम अपना काम शुरू करें।
सही जगह निशाना लगाया।
अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। मैं घर की तरफ जा रही हूँ। कहाँ? अच्छा, 20 मिनट में आ जाऊंगी वहां। السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اکیلی آئی ہیں؟
ہاں بیٹھو، ایک خاص کام ہے مکمل رازداری کے ساتھ، بیٹھو. امید کرتی ہوں کہ تم کسی اور سے یہ فرمائش نہ کر بیٹھو.
کون سی فرمائش؟
تم نہیں چاہتی کہ
میڈم مینیو
مینیو ہے ہمارے پاس. کیا تم نہیں چاہتی کہ اس طرح کچھ ہو جائے کہ تمہاری اور افشین کی جان ہمیشہ کے لیے اس جاسوسی ادارے سے بچ جائے؟
جی ہاں.
ٹھیک ہے، اب اس کا وقت ہے. کچھ ایسے مسائل آ گئے ہیں جو تمہارے بغیر حل نہیں ہو سکتے. تم اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتی ہو.
اچھا تو
دیکھو، ادارے میں ایک بہت ہی اہم پروگرام آیا ہے. یہ پروگرام ادارے کے لیے بہت زیادہ ہی اہم ہے. آج کل بس یہی سوچا جا رہا ہے کہ اس پروگرام کی ذمہ داری کس کے ہاتھ میں دیں. میں چاہتی ہوں کہ تمہارا نام دے دوں، مگر چاہتی ہوں کہ تمہاری مرضی سے.
مجھے آپ پر حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی کہ زبردستی جاسوسی کا کام کیسے کر لیتی ہیں. کس طرح کی توقع رکھوں میں آپ لوگوں سے؟ میرے لیے یہیں تک کافی ہے. میں چاہتی ہوں کہ بڑی خیانت صرف بڑے لوگوں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے.
کاش خدا ایسا ہی کرے، یعنی میں پھر خود انجام دوں اور آزاد ہو جاؤں اس دلدل سے. اس کا مطلب تم نہیں کرو گی. یہ کام محب کے لیے اس قدر اہم ہے کہ تم کوئی بھی شرط رکھو گی تو وہ اسے قبول کر لے گا، ہر حال میں قبول کرے گا، مجبور ہے قبول کرنے کے لیے. اور دیکھو، شرط بھی یہی رکھنا کہ اس کام کے بعد تمہارا اور افشین کا اس ادارے سے کبھی بھی کوئی تعلق نہیں رہے گا. اس کے بعد تم جیسے چاہے رہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہو، تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا. یہی وہ وقت ہے جس سے فائدہ اٹھا لو سیمی.
مجھے وقت چاہیے کہ سوچ سکوں. بعد میں ارادہ کروں گی، کل تک.
ٹھیک ہے، مطلب کل تک نا. میں کچھ آرڈر کرتی ہوں تمہارے لیے.
یقیناً کچھ غلط سوچ رہی ہوگی.
ہاں نہیں، افشین کا سوچ رہی ہوں.
زیادہ فکر نہ کرو اس کی، اگر دھیان سے کام کرو گی تو کچھ دنوں میں ہم بھی اس کے پاس ہوں گے. البتہ جیب میں پیسے اور دل میں اطمینان تو ہوگا نا. اب سوچنا چھوڑو اور کھڑی ہو جاؤ، تمام حالات کو چیک کرو، کوئی مسئلہ نہ ہو. اس طرح سوچو گی تو روڈ پہ آ جاؤ گی. چلو جلدی سے کھڑی ہو. میں جا رہا ہوں، کھانا آرڈر کیا تھا وہ لے کے آتا ہوں.
کب تک آؤ گے؟
ظہر تک آ جاؤں گا. تم بھی بتا دو میں تمہارے لیے وہاں سے کیا لے کے آؤں.
میں بھول گئی ہوں، بتا تو دو وہاں پہ ہے کیا.
آج دیکھ لو گی تو پھر کبھی نہیں بھولو گی. خدا حافظ.
خدا حافظ.
ہیلو جی، ہمارے لڑکے کو بھیج دیا ہے تاکہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں خرید سکے دفتر کے لیے. جی ہاں، اکیلی ہے. तकरीबन 2 से 3 घंटे तक। खुदा हाफिज।
इस गधे को देखो, इंसानों का सौदा करने वाला, चलने का तरीका देखो, खबीस इंसान। सुन रहे हो? मनहूस।
जी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। मैंने बहुत सोचा मगर अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर ये क्या जोर जबरदस्ती है कि जो मुहिब साहब कहें उस पर अमल करना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है, मैं अब तक नहीं समझ सकी हूँ कि क्या करूं। जी कहाँ? हाँ, वही पहले वाला दफ्तर है ना? जी मैं ठीक 7 बजे आ जाऊंगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज।
तुम इस वक्त क्या कहना चाहती हो?
मैं चाहती हूँ कि ये आखिरी काम हो जो मैं आपके लिए अंजाम दूँ, और इसके होने के बाद ना मेरा ना अफशीन का हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा इस इदारे या जो भी नाम है इस जगह का।
ठीक है, और
जानना चाहती हूँ कि इस काम में क्या करना होगा।
वक्त पर समझ जाओगी, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर
चाहती हूँ कि जान लूं कि इस काम को अंजाम देने के बाद आप पर कैसे भरोसा करूं कि आप इस पर अमल करेंगे।
कैसा भरोसा चाहती हूँ?
नहीं जानती हूँ मैं।
तुम चाहती हो कि मैं अपनी अच्छी नीयत का सबूत दूं तुम्हें? सब्र करो। ये लो, ये तुम्हारे इदारे के साथ काम करने का फॉर्म है, और ये वो सनद है जो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के हिसाब किताब से मुतल्लिक है। चाहो तो इसको फाड़ कर चली जाओ, और जो काम मैं तुमसे ठीक से किया तो तकरीबन 10 दिन बाद जहां चाहोगी भेज दूंगा, अलबत्ता तुम्हारे भाई अफशीन के साथ।
और अगर चाहूं कि मैं ईरान में ही रहूं तो?
अफशीन को ईरान मुंतकिल कर दिया जाएगा, मगर ये बात अच्छी तरह अपने जहन में रखना कि पुलिस काम और हर मसले में इदारा तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा।
नहीं जानती कि इस काम के लिए मुझे क्या करना होगा, लेकिन फिर भी इसको करने के लिए मैंने आपसे हाँ कर दी है।
बगैर उनको इत्तला दिए हुए।
इस काम को अंजाम देने में तुमको पहले काम से ज्यादा मुश्किल नहीं होगी।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो?
शुक्रिया,
तुम्हारी मुलाकात बहुत लंबी हो गई।
तुम्हारे लिए अहम है।
नहीं, मगर बहुत खूब। मुहीब तुम जैसे लोगों के साथ किसी मामले में इतना टाइम नहीं लगाता है। छोड़ो, खैर क्या हुआ?
कुछ नहीं, मैं तो हर दफा की तरह उनकी पेशकश पे अमल करती हूँ।
अच्छा है, तुम चाहो तो उनके गलत प्रोजेक्ट्स को खाक में मिला सकती हो।
तुम तक कैसे पहुंची ये बात?
मैं मानती हूँ तुम्हारी मदद करना मेरे लिए, मुझे पता है, मेरी मौत को दावत देना है। दरअसल मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे हाथों से इन शैतानों के मजदूरों से इंतकाम लूं।
मैं सोच रही हूँ कि तुम हबीबी की तरह काम क्यों नहीं करती हो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलती हो।
तुम्हें एक मशवरा देती हूँ, उस पागल पर हरगिज यकीन नहीं करना। हबीबी मुहीब से कई गुना खतरनाक और बेरहम है, उसकी झूठी बातों और फरेब में मत आना। मुझे अफसोस है कि वो तुम्हें धोखा दे रही है। मेरी मुलाकात का कोई जिक्र तो नहीं किया तुमने उनसे? अगर उसे मालूम हो गया तो हम दोनों का काम तमाम हो जाएगा। बताया तो नहीं?
नहीं।
अब मुझे सुकून मिला। और क्या हुआ बताओ?
तुम तो हर बात को पहले से जानती हो।
यानी तुमने आज रात की मुलाकात की रिकॉर्डिंग बनाई है?
मैंने कहा है?
अहम नहीं है।
हाँ, आज रात की भी मुलाकात रिकॉर्ड की है मैंने।
तुम जानती हो कि ये रिकॉर्डिंग तुम्हारी और अफशीन की जिंदगी को निजात दे सकती है, बस उनसे संभल कर रहो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम पर नजर रख सकती हूँ।
नहीं नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं खुद उनसे एहतियात कर लूंगी। तो अब कोई काम नहीं है तो मैं जाऊँ?
तुम्हारे आने का शुक्रिया।
मैं भी आपकी शुक्रगुजार हूँ।
सेमी, उन माइक्रो सीडीज को हरगिज अपने घर में नहीं रखना। किसी ऐसे शख्स के पास रखवाना जिस पर तुम्हें बहुत एतमाद हो, ताकि आसानी से उन्हें सीडीज ना मिल सकें। और वो शख्स तुम्हारे नजदीक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और देखो, हरगिज ऐसा कोई दोस्त नहीं होना चाहिए जिससे तुम्हारा ज्यादा मिलना जुलना हो। सोचो, अपनी किसी ऐसी दोस्त को ढूंढो जिसे मिले हुए काफी अरसा हो गया हो और कोई नहीं जानता हो उसे। समझ गई ना?
शुक्रिया, खुदा हाफिज।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो?
शुक्रिया,
तुम्हारी मुलाकात बहुत लंबी हो गई।
तुम्हारे लिए अहम है?
नहीं, मगर बहुत खूब। मुहिब, तुम जैसे लोगों के साथ किसी मामले में इतना टाइम नहीं लगाता है। छोड़ो, खैर क्या हुआ?
कुछ नहीं, मैं तो हर दफा की तरह उनकी पेशकश पे अमल करती हूँ।
अच्छा है, तुम चाहो तो उनके गलत प्रोजेक्ट्स को खाक में मिला सकती हो।
तुम तक कैसे पहुंची ये बात?
घटिया, क्यों नहीं बता रही कि उस मुलाकात में क्या हुआ? क्या बात हुई होगी? आखिर क्या चाहते होंगे वो?
इस काम में क्या है आखिर? हाँ, यही है। बस अब खुदा करे कितने सालों में बदल ना गई हो। अस्सलामुअलैकुम, क्या ये नायाबी साहब का घर है? कैसे हैं? माफ करिएगा, मैं सीमी हूँ, महताब के स्कूल के जमाने की दोस्तों में से। वो हैं क्या? बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम लड़की, तुम कहाँ हो? बहुत खुशी हुई।
अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, कैसे हैं आप? मेरे सर में बहुत दर्द है, नहीं आ सकती। बहुत शुक्रिया आपकी मेहरबानी का, डॉक्टर से टाइम ले लिया है, वहीं जा रही हूँ। ओह देखो, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। अच्छा तुम खुद वहाँ आ जाओ, मैं भी आधे घंटे में वहाँ पर आ जाऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो हॉस्पिटल के अंदर गई है। ठीक है ठीक है, उसके पीछे गया है। ठीक है, खुदा हाफिज।
हेलो, हमारे दोस्त की तबीयत इस बार ठीक नहीं है। हाँ, डॉक्टर के पास गई है। हाँ मैं वहीं हूँ। ठीक है।
तुम्हारा नंबर क्या है बेटा?
किस चीज का नंबर?
अरे तुम्हारी गाड़ी का नंबर थोड़ी पूछ रही हूँ, डॉक्टर का नंबर।
जी नहीं, मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाना।
मरीज नहीं हो तो यहाँ क्यों बैठे हो?
खुदा का शुक्र है मैं मरीज नहीं हूँ।
अरे जाओ।
अरे भाई,
तो यहाँ क्यों आकर बैठ गए? जाओ अपनी जगह पर बैठो जाके।